नमस्कार भारत, तारीख 27 सितंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 52 साल बाद फार्क विद्रोहियों और कोलंबिया की सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। विद्रोही नेता ने कहा कि हर उस पीड़ा के लिए माफी जो हमने युद्ध के चलते पहुंचाई। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट में। संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज के भाषण पर भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला।
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा।
जम्मू एंड कश्मीर नेवर वाज एंड नेवर कैन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में विद्रोहियों और कोलंबिया की सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है, जिसके बाद 5 दशक पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा। कोलंबिया के इस गृह युद्ध में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। विद्रोही नेता तिमाशेंको ने संघर्ष के दौरान पीड़ित हुए लोगों से माफी मांगी। इस समझौते के बाद यूरोपीय संघ ने कोलंबिया के फार्क विद्रोहियों को चरमपंथी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है। शांति समझौता लागू होने के बाद यूरोपीय संघ कोलंबिया के पुनर्निर्माण में मदद कर सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हमें अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे और दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का भी मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण को झूठ और आधारहीन आरोपों का पुलिंदा बताया है। इस बीच पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी मामलों में हस्तक्षेप के सबूत संयुक्त राष्ट्र में पेश किए जाएंगे। सऊदी अरब में 14,000 से ज्यादा महिलाओं ने पुरुष संरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जो सरकार को सौंपे जाएंगे। मौजूदा समय में एक सऊदी महिला को यात्रा, विवाह और अक्सर नौकरी या पढ़ाई के लिए भी किसी पुरुष संरक्षक की इजाज़त लेनी पड़ती है। सऊदी किंग के दफ्तर में पिछले कुछ दिनों में याचिका के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं ने टेलीग्राम भेजे हैं। यह अभियान सोशल मीडिया पर तेज़ हो चुका है। इससे जुड़ी एक कार्यकर्ता अल यूसेफ का कहना है कि सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा,
इट्स अ न्यू सिस्टम इन सऊदी अरेबिया, वी डिड नॉट हैव दैट अंटिल द 80s।
सऊदी अरब में ये नई व्यवस्था है, 80 के दशक तक ये मौजूद नहीं थी। इस व्यवस्था के तहत एक पुरुष एक महिला की जिंदगी के हर पहलू का अभिभावक बन जाता है। हमने याचिका में ये बताया कि ये सरकार का बनाया हुआ कानून है, ये धर्म या रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ नहीं है। अल यूसेफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली की सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर होने वाले जनमत संग्रह के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने कहा कि अगर प्रस्तावित सुधारों को जनता नकार देती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना है कि इन बदलावों से सीनेट की ताकत और क्षेत्रीय प्रभावों को कम करके इटली की राजनीतिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों से सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल जाएंगी। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर बाद न्यूयॉर्क में अमरीकी राष्ट्रपति पद अभियान के लिए अपने पहले टेलीविजन बहस में हिस्सा लेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। कोलंबिया की जो धरती पिछले 52 साल से जारी गृह युद्ध के चलते रक्त रंजित थी, उस पर विराम लग गया है। वामपंथी फार्क विद्रोहियों और कोलंबिया की सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। सरकार की ओर से राष्ट्रपति सेंटोस और विद्रोहियों के नेता तिमाशेंको ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 52 सालों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस गृह युद्ध का शिकार बन चुके हैं। विद्रोहियों के नेता तिमाशेंको ने कहा, विद्रोही नेता तिमाशेंको कह रहे थे, मैं इस गृह युद्ध की भेंट चढ़े सभी पीड़ितों से माफी मांगता हूं, उस पीड़ा के लिए माफी जो युद्ध के चलते हमने आपको पहुंचाई। विद्रोही नेता तिमाशेंको के शब्द। इस शांति समझौते के चलते यूरोपीय संघ ने कोलंबिया के फार्क विद्रोहियों को चरमपंथी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है। शांति समझौता लागू होने के बाद यूरोपीय संघ कोलंबिया में पुनर्निर्माण में मदद कर पाएगा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में एक ऐतिहासिक समझौते के मौके पर धार्मिक उत्सव गीत गाए जा रहे हैं। कोलंबिया की सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत हो गए। इसके साथ ही 52 वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध खत्म हो जाएगा। कोलंबिया के इस संघर्ष में 260,000 लोगों की जान चली गई और 60,00,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस ने और विद्रोही नेता टिमोलियन जिमेनेज, जो तिमानशेखो के नाम से जाने जाते हैं, गोली से बनी हुई कलम से समझौते पर हस्ताक्षर किए। बीबीसी से बात करते हुए राष्ट्रपति सैंटोस ने कहा कि युद्ध की कीमत हमेशा शांति से ज्यादा होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दशकों तक चले युद्ध से उबरने में कोलंबिया के समाज को वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, किसी भी बाधा को दूर कर लेंगे और अपने देश को एक ऐसे देश में बदल देंगे जिसका हमने एक शांति के देश के रूप में सपना देखा था। राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस के शब्द। सैंटोस ने कहा कि कोलंबिया दुनिया को दिखा रहा है कि शांति मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश एकजुट होगा। इसी साल जून में राष्ट्रपति सैंटोस और फार्क विद्रोही नेता तिमानशेखो संघर्ष को खत्म करने पर रजामंद हुए थे और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने राजधानी हवाना में इसका ऐलान किया। हवाना में नवंबर 2012 से ही इस पर बातचीत चल रही थी। करीब 2,500 विदेशी और स्थानीय हस्तियां इस ऐतिहासिक समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। कोलंबिया की धरती पर दोनों नेताओं ने पहली बार हाथ मिलाया। दुनिया भर के नेता इस मौके के गवाह बनने के लिए कार्टिजेना पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने समझौते को एक बहुत बड़ा कदम बताया और वादा किया कि इसे लागू करने के लिए अमरीका करीब 26 अरब रुपए देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि फार्क को चरमपंथी संगठन की अपनी सूची से हटाने के लिए अमरीका अभी तैयार नहीं है और अमरीका में अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद तथ्य बदलने वाले हैं। अगर ये हथियार छोड़ देते हैं और समाज में घुल मिल जाते हैं तो इन सभी बातों का समीक्षा में ध्यान रखा जाना चाहिए और हम उन परिस्थितियों में इसकी समीक्षा करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। वहीं यूरोपीय संघ ने फार्क को चरमपंथी संगठन की सूची से हटा दिया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख फेडरिको मोगेरिनी ने एक बयान में कहा कि शांति समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद संघ का फैसला प्रभावी होगा। कोलंबिया सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच हुए इस समझौते के तहत फार्क अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और संयुक्त राष्ट्र को 180 दिनों में अपने हथियार सौंप देंगे। वामपंथी गोरिला गुट साल 1964 से ही संघर्ष में जुटा था और इसे लातिन अमरीका की सबसे पुरानी लड़ाइयों में गिना जाता है। कोलंबिया के नागरिक इस समझौते पर 2 अक्टूबर को जनमत संग्रह में मतदान करेंगे। बीबीसी की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता लायस डुसेट का कहना है कि कोलंबिया के ज्यादातर लोग इस समझौते के पक्ष में अपना मतदान करेंगे।
52 साल बाद वामपंथी फार्क विद्रोहियों और कोलंबिया की सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट यानी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस का दौर शुरू हो गया है। पहली बहस अभी अभी शुरू हुई है। कांटे की टक्कर है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के बीच। मंच पर दोनों विराजमान हैं और इस समय हिलरी क्लिंटन बोल रही हैं।
Where we are talking about the important issues facing our country, you have to judge us. Who can shoulder the immense, awesome responsibilities?
हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि हमें देश के मामलों पर बात करनी है। आगे बात में वो बहुत सारी बात कहेंगी और सवालों के जवाब भी देंगी। ब्रजेश उपाध्याय के साथ चलते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ब्रजेश, कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रेसिडेंशियल डिबेट और एजेंडा क्या है?
जी हाँ, आपसे आप कह सकते हैं कि जिसे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक शो कहा जा रहा है उसका आगाज हो चुका है। मोहनलाल, मैं अभी उस वक्त वहीं पर हूँ जहाँ डिबेट हो रहा है। तीन अहम इस पे विषय हैं कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है, अमेरिका को संपन्न और कैसे किया जा सकता है और अमेरिका की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। ये तीन विषय होंगे जिस पर दोनों ही उम्मीदवारों से सवाल जवाब होंगे और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दोनों आपस में भी सीधा एक दूसरे से सवाल करेंगे। अंदाजा है कि इस वक्त 10 करोड़ अमरीकी इस डिबेट को देख रहे हैं, एक अंदाजा जो पहले लगाया गया था। हिलरी क्लिंटन की कोशिश होगी ये दिखाने की कि ट्रंप इस ओहदे के काबिल नहीं है, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। वहीं 17 उम्मीदवारों पर धूल चटाकर यहां तक पहुंचने वाले ट्रंप की कोशिश होगी कि हिलरी की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए अमेरिका को ये बताना कि वो आम सियासतदानों से हटकर हैं और अमेरिका को एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत है जो सिर्फ वही कर सकते हैं। और ताजा सर्वेक्षणों के अनुसार दोनों ही उम्मीदवार लगभग बराबरी पर चल रहे हैं, लेकिन मोमेंटम ट्रंप के साथ है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में वो लगातार आगे बढ़ते दिखे हैं। बेहद अहम डिबेट है उस मायने में ये, क्योंकि अगर यहाँ पर का जो प्रदर्शन होगा उसकी वजह से देखने वाली बात ये होगी कि क्या दोनों की जो रेटिंग्स हैं उस पर किस तरह का असर पड़ता है।
जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर पूछा जा रहा है, जिस पर वो अपनी बात कह रहे हैं।
Not let it happen. Under my plan, I'll be reducing taxes tremendously from 35% to 15% for companies.
कह रहे हैं कि अमेरिका अन्य राष्ट्रों के मुकाबले नौकरियां खो रहा है। अपने इस भाषण में यानी कि इस टीवी डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन कौन कौन सी बातें कहते हैं, अगले कार्यक्रम यानी कि विश्व भारती में जब हम उपस्थित होंगे तो सारे विवरण के साथ उपस्थित होंगे।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। कल शाम जब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो उन्होंने कई मामलों पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हिंदी में दिए गए अपने भाषण में सुषमा ने उन देशों को अलग थलग करने की बात भी कही जो कि चरमपंथियों को पनाह देते हैं। भारत की विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है।
हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया, लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें।
जम्मू कश्मीर की बात कर रही थी सुषमा स्वराज और उन्होंने कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान का भी मामला उठाया। सुषमा स्वराज के इन बयानों के बाद संयुक्त राष्ट्र में दोनों देशों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। सुनिए किसने क्या कहा न्यूयॉर्क से हमारे सहयोगी सलीम रिजवी की रिपोर्ट में।
सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभागार में वाक युद्ध छिड़ गया। भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोदी ने सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण को झूठ और आधारहीन आरोपों का पुलिंदा बताया।
Her statement is a litany of falsehoods about my country and a travesty of facts and history.
मलिहा लोदी ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा नहीं है।
जम्मू एंड कश्मीर नेवर वाज एंड नेवर कैन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। It is disputed territory.
सुषमा स्वराज ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान समझता है कि वो भारत का हिस्सा छीन सकता है तो उसका मंसूबा पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। मलिहा लोदी ने यह भी कहा कि भारतीय विदेश मंत्री का यह दावा सही नहीं है कि उनके देश ने पाकिस्तान पर बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं लगाई है। मलिहा लोदी के बयान के बाद भारत की राजनयिक इनम गंभीर ने जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर तो भारत का हमेशा हिस्सा रहेगा।
The state of Jammu and Kashmir is an integral part of India and will always continue to do so.
भारतीय प्रतिनिधि ने यह सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की प्रतिनिधि इस बात की पुष्टि करेंगी कि पाकिस्तान आतंकवाद को राष्ट्र की नीति के तौर पर नहीं प्रयोग करता।
Can the representative of Pakistan confirm that they do not use terrorist proxies and export terrorism as a matter of state policy?
भारतीय प्रतिनिधि का मलिहा लोदी से यह भी सवाल था कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के बावजूद अभी तक पाकिस्तान में आतंकवाद की पनाहगाहें क्यों पनप रही हैं?
Can the representative of Pakistan clarify how is it that terror sanctuaries and safe havens in her country?
इससे पहले भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सुषमा स्वराज का बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा था। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे पर जोर तो दिया ही, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को अलग थलग करने का भी आह्वान किया। उस पर पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने जवाब दिया कि ये भारत सरकार का भ्रम है कि अगर वो सोचती है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सुषमा स्वराज के भाषण के बाद हुई दोनों देशों के बीच की बयानबाजी आप सुन रहे थे, सलीम रिजवी रिपोर्ट सुना रहे थे। कार्यक्रम में अब यहीं पर हम अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। अमर शर्मा, अखबार आप पढ़ चुके हैं, हमने एक रिपोर्ट सुनी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज के भाषण को लेकर थी। भारत के जो अखबार हैं वो क्या कह रहे हैं?
जी मोहनलाल जी, भारत के जो जितने भी अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार है, सबसे उसमें पहली खबर आज उन्होंने इसी को बनाया है कि सुषमा स्वराज ने वहाँ संयुक्त राष्ट्र में क्या भाषण दिया है, कश्मीर के मुद्दे पर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है। और वहीं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते,
सिंधु समझौते की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर।
जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये पहली खबर है, 5 कॉलम में इन्होंने छापा है। इंडियन एक्सप्रेस में भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से 5 कॉलम में छापा गया है, और जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ जल सिंधु जल संधि पर भारत सख्ती बरत सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सोमवार को सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, और सूत्रों के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है, इसके साथ ही एक अन्य उपाय के रूप में उसको दिए जाने वाले पानी में कटौती की जा सकती है। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही इस खबर के ठीक बराबर में 2 कॉलम में तस्वीर के साथ जो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मूक मार्च चल रही है, इसको
जिसमें कि
लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस अखबार ने इस खबर में बताया है कि बिहाइंड द वॉइसेज एट मराठा रैलीज एन एंटी दलित टोन, वो कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी एक अंतर्ध्वनि सुनाई दे रही है इन रैलीज में, कि मराठा में मराठा समुदाय की मूक रैलियों में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का रूप जो लेती जा रही हैं।
हाँ।
और 19 सितंबर को नांदेड़ की रैली में जो कोपड़ी की घटना के साथ उसके खिलाफ में मराठा समुदाय के समर्थन में दलितों ने भी रैली में शिरकत की थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं, और एक के बाद एक हो रही इन रैलियों में एससी एसटी समुदाय के खिलाफ शत्रुता साफ झलक रही है, ऐसा अखबार की दावा है। और द हिंदू अखबार ने वही पुट कावेरी ऑर्डर ऑन होल्ड, कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पानी नहीं दे सकते तमिलनाडु को, उनके जलाशयों में पानी की बहुत किल्लत है। और हिंदी के अखबारों
पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कावेरी नदी के कितना पानी दे, कितना हिस्सा दे, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद कर्नाटक ने कहा है कि वो दिसंबर तक तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी नहीं दे सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा अखबारों की समीक्षा के लिए। अब आपको झारखंड हम ले चलते हैं। झारखंड में आंदोलन की राह पर उतरे पारा टीचर यानी कि शिक्षा मित्रों को राजधानी रांची में पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। इस घटना में किसी का पैर टूटा तो किसी का माथा फटा, पानी के फवारे भी उन पर छोड़े गए। शिक्षक सीधी नियुक्ति के मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। उधर गांवों से पहुंचे हजारों शिक्षकों ने अलग से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरे रखा, सड़क पर सभा की नारेबाजी की। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
नौकरी तो नहीं दिया, जान मार दिया, नौकरी देखिए, हमको पैर में मारते, हाथ मारते, माथा मार के फाड़ दिया, देखिए, अरे बाबा, मेरे बाप नहीं बचेगा रे, ये पहली बार की निरंकुश सरकार, ये जान मार दिया, जान मार दिया।
पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों की सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से पीटा गया। दूर दराज इलाकों से रांची पहुंचे शिक्षा मित्रों को यह पता था कि उन्हें रोकने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात है, लेकिन शायद इसका आभास नहीं रहा होगा कि लाठियां भी खानी पड़ेगी। ये शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। राजभवन के पास पुलिस से उनकी तीखी झड़पें हुई, फिर लाठियां चटकते ही अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कम एक दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक जुलूस की शक्ल में निकले शिक्षक घेरा तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई पर पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे ने तल्ख टिप्पणी की है।
चार्ज का हम लोग घोर निंदा करते हैं, और अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो ऐसा ना हो कि पारा टीचर कलम छोड़ के कहीं दूसरा काम कर ले। एकदम इस बात का हम लोग घोर निंदा करते हैं, सरकार हमारी बात को सुने और बात को तय करे कि हमको रखना है या हटाना है। ये लाठी चार्ज करके सोचे कि पानी चला के सोचे कि डराने के लिए, तो सर इस बार पारा टीचर डरने वाला नहीं है।
उधर मानदेय बढ़ाने और समायोजन की मांग पर हफ्ते भर से हड़ताल कर रहे हजारों शिक्षकों ने अलग से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, पार्टी दफ्तर के गेट पर झंडे बैनर लगा दिए। बीजेपी दफ्तर का ही घेराव क्यों, इस सवाल पर निरंजन कुमार कहते हैं,
किसी दूसरे पार्टी की सत्ता होती थी उस समय आकर ये बड़े ही करते थे कि हम आएंगे तो कुछ करेंगे, आज आने के बाद इनके पास साल भर होने जा रहा, अभी तक कोई विजन नहीं है और ये हमारे इस पूरे संगठन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, बल्कि सरकार केवल शोषण वो हम काम पे काम बढ़ा रही है, उसके एवज में पैसे नहीं बढ़ा रहे।
इस बीच राज्य की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव का कहना है कि मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है, जहां तक सीधी नियुक्ति की बात है तो इसके लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना ही होगा।
आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि आपने व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा मदद किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि बिना क्वालिटी के या बिना किसी चीज को देखे हुए डायरेक्ट ले लें, सीधी नियुक्ति बोल रहे हैं, अभी तो सीधी नियुक्ति है, कॉन्स्टिट्यूट नियुक्ति है, सीधी नियुक्ति की परिभाषा क्या है, जो अभी नियुक्तियाँ हो रही है वो तो मेरिट के आधार पे ही है।
अब हड़ताली शिक्षक आंदोलन तेज करने की जिद पर अड़े हैं और सरकार फिलहाल झुकने को तैयार नहीं दिखती, लिहाजा सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
झारखंड में पारा टीचर यानी कि शिक्षा मित्रों का आंदोलन।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा, नमस्कार भारत। कल भारत का पीएसएलवी C-35 अपने अब तक के सबसे बड़े मिशन पर निकल गया और इस रॉकेट के साथ 5 विदेशी उपग्रह भी छोड़े गए। हाल के महीनों में ही भारत ने कई विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं जिनमें करीब 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की आमदनी हुई। तो क्या विदेशी उपग्रह लॉन्च करना पैसे कमाने का एक नया जरिया बनता जा रहा है? बेंगलोर से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमई की रिपोर्ट सुनिए दिव्या आर्य से।
4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5,
इसी साल जून में भारत ने एक ही मिशन में 20 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सबसे ज्यादा है और इन 20 में से 17 विदेशी उपग्रह थे जिन्हें ले जाने के लिए भारत को पैसे दिए गए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार कहते हैं,
वी हैव अ नेशनल रिक्वायरमेंट, सो वी बिल्ड सैटेलाइट्स फॉर वेदर इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन और नेविगेशन।
हमारे देश को जरूरत है इसलिए हम उपग्रह बनाते हैं, फिर चाहे वो पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए हो या दूर संचार के लिए, पर इनके लॉन्च व्हीकल में अतिरिक्त जगह रह जाती है तो हम उसका ऐसा इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे अपने खर्च को कम कर पाएं। इसीलिए साथ में चलने वाले मुसाफिर की ही तरह हम ये विदेशी सैटेलाइट्स साथ ले जाने लगे।
ये थे इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार के शब्द। भारत अब औसतन हर महीने एक लॉन्च कर रहा है, पर विदेशी उपग्रहों को ऐसी सुविधा देने का मतलब है नए लॉन्च व्हीकल पर बेतहाशा पैसे खर्च करना। और सवाल उठ रहे हैं कि गरीबी की बड़ी समस्या से जूझते देश को अपने पैसे ऐसे खर्च करने चाहिए क्या? पर इसरो के मुताबिक इससे मुनाफा काफी है। भारत ने अब तक 74 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर 10 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा कमा लिए हैं।
And the $40 billion is divided into 7 sectors and space is one.
सुष्मिता मोहंती अर्थ टू ऑर्बिट नाम की कंपनी चलाती हैं, जो इसरो और उन विदेशी कंपनियों के बीच में करार करवाती है जो सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहती हूं।
The need for launches is growing exponentially, primarily because we are now seeing
लॉन्च करने की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह है ऐसी नई कंपनियों का सामने आना जो 1, 2, या 5 सैटेलाइट नहीं बल्कि सैटेलाइट्स का पूरा तारा मंडल यानी कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करना चाहते हैं, यानी 24 से 120 सैटेलाइट्स तक।
ये थे अर्थ टू ऑर्बिट कंपनी की सुष्मिता मोहंती के शब्द। पर इस बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत है, अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाने वाले अन्य देशों से ही नहीं बल्कि निजी कंपनियों से भी। अभी तक भारत छोटे और हल्के उपग्रह ही साथ ले जा रहा है, जबकि भारी उपग्रह के लॉन्च में ही बड़ा मुनाफा है।
और अब बात करेंगे खेल की खबरों की। भारत ने अपने ऐतिहासिक 500वें टेस्ट मैच में कल न्यूजीलैंड को 197 रनों से करारी मात दी। भारत की जीत में आर अश्विन चमके। उनके प्रदर्शन और भारत की जीत को लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन से बात की।
बेशक देखें 197 रन की जीत जो होती है वो बड़ी होगी, लेकिन ये कहना होगा कि न्यूजीलैंड ने कुछ हद तक टक्कर अच्छा दिया, खास करके जिस तरह से पहली इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों को रोका और फिर खुद की भी जो बैटिंग आई पहली इनिंग में वो एक समय तक तो ऐसा लगा कि शायद पहली इनिंग की लीड भी ले लेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और फिर आखिरी दिन पर हमने देखा जिस तरह से ल्यूक रॉन्की, मिचेल कैंटनर दोनों ही यंग खिलाड़ी हैं, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन हिम्मत दिखाया, हौसला दिखाया और ये नहीं है कि बहुत जल्द सो गए, लेट गए कि कहा कि भाई आप जीत जाइए मैच, उन्होंने टक्कर जरूर दी, तो दाद देनी होगी और उसी से कुछ आशा है कि ये सीरीज कम्पिटिटिव हो।
लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो टर्निंग विकेट है वहाँ पर जिस तरह से रफ बन जाते हैं, लगातार पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, यहाँ तक कि दोनों ही टीम के बैट्समैन के लिए?
या बिल्कुल, देखें इंडियन कंडीशन जो है वो एक तरह से अजीबोगरीब है, जो पिक्यूलियर होते हैं सब कॉन्टिनेंट के कंडीशन, वहाँ पर खेलना आसान नहीं है। एक तो फुटमार्क बन जाते हैं जिससे हर किस्म के स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, ऑफ स्पिनर जैसे अश्विन थे या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, और वो राउंड द विकेट, ओवर द विकेट जहाँ पर भी जाते हैं फुटमार्क को एक्सप्लॉइट कर सकते, तो ना सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, ना सिर्फ सबर की और कॉन्सेंट्रेशन की, लेकिन इसके साथ साथ हुनर की भी बहुत जरूरत होती है। और ये सब हमने देखा केन विलियमसन की बैटिंग में, जो उनका अप्रोच था टेक्निकली बहुत करेक्ट है, और मेरा मानना तो ये है कि टॉप वर्ल्ड के टॉप 4-5 बल्लेबाजों में से केन विलियमसन है, लेकिन बाकी जो उनका टॉप ऑर्डर था थोड़ा सा हल्का नजर आया। मार्टिन गप्टिल जो काफी खेले हैं इंडिया में, उन्होंने निराश किया, और उनसे ज्यादा शायद रॉस टेलर ने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खेले हैं न्यूजीलैंड की टीम में, अब तक उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंडिया में काफी खेले हैं, आईपीएल में भी खेले हैं, और अगर टॉप ऑर्डर में पहले 5 में से कोई आप 3 बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बनाए तो फिर इंडिया में सफल होना बहुत मुश्किल है। मेरा ये मानना है काफी अरसे से कि विजिटिंग टीम जो आती है वो अगर 350-350 रन बनाने की उनमें क्षमता नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है इंडिया को इंडिया में हराना।
और आर अश्विन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से केवल 37 टेस्ट मैचों में ही उन्होंने अपने 200 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट पूरे कर लिए, हालांकि एक समय ऐसा भी था कि उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था।
अश्विन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो एज अ T20 वनडे बॉलर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, टेस्ट में इस तरह की सफलता किसी ने सोचा नहीं था। मैच के बाद उन्होंने भी कहा कि जब वो पहला टेस्ट मैच खेले तो उन्होंने सोचा कि शायद उनका लाइफ टाइम एंबिशन फुलफिल हो गया, इससे ज्यादा कभी आगे सोचा नहीं था कि एक टेस्ट से ज्यादा खेलेंगे, लेकिन अब 37 टेस्ट हो गए, 200 विकेट से ज्यादा हो गए, और मेरा मानना यह है कि अब इनके ऊपर लगाम नहीं लग सकती, क्योंकि एक इनका आत्मविश्वास बहुत है, बहुत ही एनालिटिकल माइंड है, और हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि बल्लेबाज को किस तरह से वो अपने काबू में कर लें।
ये थे क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन, जो कि विश्लेषण कर रहे थे कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच का। और जैसा कि श्रोता हमने आपको बताया था कि इस समय हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली टीवी डिबेट चल रही है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन की आलोचना करते हुए कहा है कि उनके पास भविष्य की योजनाओं का स्पष्ट खाका नहीं है। यहां पर आपको बता दें कि 3 डिबेट होती हैं जिसमें कि ये पहली डिबेट है, और इसमें जो पहला सवाल पूछा गया वो अमरीकी अर्थव्यवस्था व नौकरी को लेकर पहला सवाल पूछा गया। टैक्स संबंधी यानी कि कर का ढांचा क्या होना चाहिए, इस पर इन दोनों की राय पूछी जा रही है। और इस समय हिलरी क्लिंटन बोल रही हैं। कार्यक्रम में यानी कि अगले कार्यक्रम विश्व भारती में पूरा ब्यौरा लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन इस समय मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में विद्रोहियों और कोलंबिया की सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है, जिसके बाद 5 दशक पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हमें अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। सऊदी अरब में 14,000 से ज्यादा महिलाओं ने पुरुष संरक्षक व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जो सरकार को सौंपा जाएगा। इटली की सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर होने वाले जनमत संग्रह के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल दीपक जसरोठिया के साथ मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।